सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ आज जुड़े हैं शिशिर सिन्हा, आर्थिक विशेषज्ञ। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
शिशिर जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक हुई कैबिनेट की और उसमें बहुत अहम फैसले लिए गए हमारे मूलभूत ढांचे को लेकर, हमारे कृषि क्षेत्र को लेकर, जो भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य योजना और कॉटन सीजन के लिए किस तरह से उनको समर्थन दिया जाए फार्मर्स को, फोर लेनिंग की बात हुई है बाराबंकी से बहराइच सेक्शन में और स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम की भी बात हुई है। कुल 54,926 करोड़ रुपए के ये पूरी आउटले है इन स्कीम्स की। कैसे देखते हैं आप आज के फैसले को, खासकर अगर हम सबसे पहले भव्य स्कीम की बात करें तो आप हमें इसके महत्व के बारे में बता सकते हैं?
देखिए, देश के कई हिस्सों में ये देखा गया कि आप बड़े औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन वगैरह तो मुहैया करा देते हैं, छोटे औद्योगिक इकाइयों के लिए क्या कुछ संभव है, क्योंकि उनके लिए जमीन हासिल करना, वहां पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करना, फिर कारोबार काम शुरू करना, वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, उससे उनकी लागत भी बढ़ती है। कोई एक अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। बिहार में एक फैसिलिटी डेवलप की गई जिसको प्लग एंड प्ले का नाम दिया गया। जैसे आप ये पर्स देखते हैं, बैग देखते हैं, कपड़े का बैग देखते हैं, उन सब चीजों के बनाने के लिए, तो वहां पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर आया, उसने अपना काम शुरू किया, वहां जहां कहीं भी बाजार पे पहुंचाना है वो उसने पहुंचाने का काम किया। अब ये देशव्यापी स्तर पर 100 ऐसे पार्क बनाने की योजना है जिसका नाम भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसे भव्य कहा गया है। भव्य हिंदी का ऐसा शब्द है जो एक बृहत आकार को बताता है, और इसमें जो आप एक तरीके से कही कि एक साझा प्रयास है और राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होगा। राज्य सरकारें प्रतिस्पर्धा करेंगी अपने यहाँ जो PSU हैं या निजी क्षेत्र हैं उनके साथ मिल करके, और प्रति एकड़ के लिए 1 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि लगभग 34,000 करोड़ रूपये खर्च होंगे और 34,000 एकड़ जमीन जो है वो विकसित होगी, जहां पर ये जो मीडियम साइज या स्मॉल साइज के जो या मझोले छोटे आकार के जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो काम कर सकती हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये केवल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, इससे सर्विसेज की भी बात है, दोनों को, यानी कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को फायदा होगा। एक अनुमान है कि लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के मौके जो हैं वो इसमें बन सकते हैं, तो ये एक अच्छी योजना है। और एक और महत्वपूर्ण इसमें पहलू ये है कि कई ऐसे पार्क पहले भी बने हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बने थे, लेकिन वहां पर जैसे मान लीजिए कि भवन जो है वो काफी जीर्ण अवस्था में है, उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया, जिसको हम लोग ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं।
सुनते हैं आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भव्य योजना के बारे में क्या कहा।
एक इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स का स्कीम बनी है, जिसके तहत 100 शहरों के पास में 100 ऐसे शहर जहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनता है या बन सकता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। करीब भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा 1 करोड़ पर एकड़, और मिनिमम 100 एकर्स का रिक्वायरमेंट इसमें एलिजिबिलिटी के लिए चाहिएगा। हालांकि इसको नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज के लिए 25 एकर्स ही रखा जाए।
सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है, ₹1 करोड़ पर एकड़, तो इससे क्या क्या क्रिएट होंगे? कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा।
इसको आप ऐसे समझिए कि आपको हम एक तैयार फैक्ट्री दे रहे हैं, आप यहाँ पे आकर के काम करिए, इसलिए इसका नाम ही है प्लग एंड प्ले। तो यानी कि आप आइए, आपके पास उद्यमिता है, आपके पास पूंजी है, आपके पास मशीनें हैं, जगह नहीं है, वो जगह अब आपको मिलेंगी। अच्छा, अमूमन ये पार्क जो है वो ऐसे जगह पे बनाए जाने की उम्मीद है जहां से बाजार की दूरी काफी नजदीकी भी रहेंगी, चूंकि इसमें क्राइटेरिया इसमें दिया गया PM गतिशक्ति, तो PM गतिशक्ति का क्राइटेरिया जो जोड़ा गया है उसके पीछे सोच यही है कि बाजार तक पहुंचने और कच्चा माल आप तक आने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये एक इसका महत्वपूर्ण है। और एक बात इसमें यह है कि एक प्रोविजन इसमें ऐड किया गया जिसमें कहा गया है कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि जैसे मान लीजिए कि पानी का पाइप है, सीवर का पाइप है, गैस पाइपलाइन है, ये सब के सब अंडरग्राउंड होंगे, तो ऊपर की जगह जो इसमें इस्तेमाल हो जाती थी वो जगह आपके पास खाली उपलब्ध हो जाएंगी और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और
ये बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही रही है जिसमें यूटिलिटीज भी अंडरग्राउंड है।
बिल्कुल, गुजरात में देखें जो गिफ्ट सिटी में है, गिफ्ट सिटी में बहुत सारे जो यूनिट्स बने हुए हैं वहाँ पर भी जितनी भी यूटिलिटीज हैं वो यूटिलिटीज अंडरग्राउंड हैं। उसका फायदा एक तो ये होता है कि आपके लिए जगह उपलब्ध हो जाती है और अंडरग्राउंड होने पे क्या है कि उसके मेंटेनेंस में भी आपको जो है बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती क्योंकि एक जगह पे है और आप अंडरग्राउंड में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर बनाया दीवार के पीछे तो आपको दीवार तोड़नी पड़ेगी अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि ये ग्रीन के ऊपर यानी कि जहां पे आप पर्यावरण के अनुकूल आप काम करेंगे तो आपको उतना ही फायदा।
बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें हर तरह की आपको सुविधा दी जाएगी, साइट सिलेक्शन में आपकी हैंड होल्डिंग होगी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है या सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी बात की गई, हर तरह की सुविधा दी जाएगी ताकि जैसा आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोडक्शन या सर्विस डिलीवरी शुरू की जा सके।
देखिए अगर इस परियोजना को देखते हुए 6 वर्ष की परियोजना है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राज्य सरकारों की है क्योंकि जमीन जो है लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू होता है। तो अगर राज्य सरकारें किसी भी एक पीएसयू या किसी भी एक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के काम करती है तो उसका फायदा होगा। और यहाँ पर मैं इस सत्य का जिक्र करना चाहता हूँ कि कई जगहों पर जो हमारी पीएसयूज हैं सरकारी कंपनियां इसके पास जमीन खूब है और उन जमीन पे एक बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके ऊपर अवैध कब्जा शुरू हो जाता है। तो वो अवैध कब्जा कई जगह पे मुक्त कराए गए हैं, उसको खाली कराया जा रहा है। तो इसमें एक ये भी शर्त जोड़ी गई है कि जमीन जो होनी चाहिए वो अवैध कब्जे से मुक्त होनी चाहिए।
अनकंपर्ड जो
बिल्कुल अनकंपर्ड जो वर्ड उन्होंने जिसमें ये थोड़ा सा एक तकनीकी शब्द है हाँ, लेकिन एक आम अपने श्रोताओं के लिए कह सकते हैं कि जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जो अवैध कब्जा नहीं है और वो जमीन हर तरीके के कहते हैं ना कब्जा और जो एक लोगों ने अपना कुछ काम शुरू कर दिया उन सब चीजों से मुक्त रहेंगे।
सो जो नॉर्मल एरियाज है वहाँ पे मिनिमम ये 100 एकड़ के होंगे इंडस्ट्रियल पार्क्स और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिली एरियाज है पहाड़ी इलाके
25 एकड़ के होंगे। देखिए आप मैदानी इलाकों में देखेंगे तो आपके लिए 100 एकड़ उपलब्ध कराना एक जगह पर कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर रास्ते काफी दुर्गम होते हैं, कई जगह पे परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं, तो 25 एकड़ भी अगर आप एक जगह पे जुटा लेते हैं तो वो एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो ये बहुत ही एक कहा जाए कि आकर्षक प्रस्ताव है और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपके देश में जो मझोले और छोटे उद्योग हैं उनको एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में मझोले और छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा है।
और इससे पहले कि हम अगले प्रपोजल की ओर बढ़े आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन से सेक्टर्स आपको लगता है, कौन से क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के ज्यादा इससे लाभान्वित होंगे।
देखिए वस्त्र उद्योग जो है उसके लिए ऑलरेडी एक टेक्सटाइल पार्क है फिर भी इसमें उसको शामिल किया गया है तो वस्त्र उद्योग मुझे लगता है कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर आएंगे। जो मशीन कंपोनेंट्स होते हैं कल पुर्जे होते हैं वो काफी आएंगे। मान लीजिए कि अब जैसे दिल्ली के पास एक मानेसर करके जगह है, अब मानेसर में ऑटोमोबाइल का एक फैक्ट्री है, अब मानेसर में ऐसा कोई पार्क अगर बनता है तो वहां पर ऑटो कंपोनेंट काफी संख्या में आएंगे। तो मुझे लगता है कि स्मॉल मशीनरी कंपोनेंट टेक्सटाइल ऐसे जो उद्योग हैं वो इनका काफी हद तक फायदा उठा सकते हैं।
जो 4 लेनिंग हो रही है बाराबंकी से बहराइच तक के नेशनल हाईवे की, ये सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, 101 किलोमीटर लंबा है ये, इसके बारे में हमें बताएं कि हर लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट है।
देखिए इस जगह की अगर आप आर्थिक उपयोगिता देखेंगे तो जैसा कि सरकार की ओर से बताया गया कि 3 PM गति शक्ति इकोनॉमिक नोड्स यानी कि वहां पर गति शक्ति परियोजना भी जिनको शामिल किया गया वो उपलब्ध है। जैसे वहां पर 2 मेगा फूड पार्क है उस एरिया में, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है बहराइच और श्रावस्ती, उसके अलावा 10 रेलवे स्टेशन है। तो अब इन जगहों पे अगर आप जो सड़कें हैं जो आपके लिए उसका चौड़ीकरण किया जाता है तो आर्थिक उद्देश्य तो पूरा होता ही होता है। एक महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि जहां कहीं भी सड़क बनती है या जहां कहीं भी सड़कों का विस्तार होता है या जहां कहीं भी सड़कें चौड़ी की जाती है उसमें बसावट और औद्योगिकरण की संभावना काफी होती है। अब जैसे इस इलाके में अगर मैं कहूं कि 2 मेगा फूड पार्क है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कई और फूड पार्क देखने को मिले। जो एयरपोर्ट है श्रावस्ती का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को किस तरीके से फायदा मिलेगा। और यहीं तक बात खत्म नहीं हो रही क्योंकि इसके आगे एक 50 किलोमीटर का एक और क्षेत्र है जिसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है जो सीधे आपको नेपाल की सीमा तक ले जाएगा। तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो कारोबार व्यापार बढ़ाने की जो बात चल रही है जहां पर हम म्यांमार के रास्ते या भूटान के रास्ते जो हम लोग काम करते हैं यहां भी उस इलाके का इस्तेमाल जो है उस व्यापार को बढ़ाने में किया जा सकता है। नेपाल के रास्ते आप किसी और क्षेत्र के लिए भी जो है वो जा सकता है।
6,969 करोड़ रुपए की ये परियोजना है जिसका आज अनाउंसमेंट हुई है। इससे कह रहे हैं कि ट्रैवल टाइम 3 घंटे से कम होकर 1 घंटे तक रह जाएगा, तो जैसे व्यवसायी हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है।
बिल्कुल, देखिए आज ये हम लोग कहते ना कि जो टूरिज्म है, पर्यटन जो है वो रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं लेकर के आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक जिसको कहते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि एक आपका पर्यटक आता है वो एक ढाबे पे जाता है, एक होटल में ठहरता है, वो एक गाड़ी का इस्तेमाल करता है, वो एक गाइड की मदद लेता है। तो आप सोचिए कि एक साथ आप 4 तरह की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर और भी कई तरह की जो सुविधाएं होती है वो विकसित होते हैं। तो श्रावस्ती एयरपोर्ट की बात करें या सड़क मार्ग के जरिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी जो बौद्धिस्ट सर्किट है उसमें जो हमारे पर्यटक आते हैं या जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको काफी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि समय आपका 3 घंटे से कम होकर के 1 घंटे रह जाएगा।
कपास के MSP पर भी एक घोषणा आई, आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में क्या कहा।
2023-24 का जो कॉटन सीजन था जिसमें कॉटन के प्राइसेस अचानक कम हो गए थे, तब तत्कालीन समय में CCI के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ी मदद दी गई थी और बहुत ही प्रोएक्टिव वे में मदद दी गई। करीब 7.25 लाख करोड़, 7,25,000 करोड़ किसानों को उस वक्त मदद हुई थी और 325 लाख बेल जो कॉटन प्रोड्यूस हुए थे उसमें करीब करीब 33 लाख बेल्स कॉटन के खरीदे गए थे, जिससे कि प्राइस स्टेबल हो पाया, वरना प्राइस कम होता, किसानों को नुकसान होता। इसीलिए उस समय के इस फैसले को आज उसमें जो CCI का, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर आया था उस एक्सपेंडिचर को आज रीइंबर्स करने का फैसला लिया गया कैबिनेट में। किसानों को टोटल इससे सपोर्ट मिला 11,712 करोड़ का और CCI को रीइंबर्समेंट मिला 1,118 करोड़।
सरकार ने समर्थन दिया MSP द्वारा, उसका जो 11,712 करोड़ रुपए की लागत का जो आज अनुमोदन हुआ है ये कितना इम्पोर्टेंट है।
देखिए ये एक तरीके से जो 2023-24 का जो कपास सत्र था उस दौरान जो बकाया रह गया था उसका भुगतान किया गया है। 1200 करोड़ रुपए उस समय
कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया को,
बिल्कुल। तो ये एक तरीके से कह लीजिए कि आपको पैसा मिलना था वो अभी तक मिल नहीं रहा था, अब ये साफ हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान भाइयों को इससे काफी फायदा होगा।
और बहुत ही एक रोचक जो स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम की आज अनाउंसमेंट हुई है, तो ये कितना एक कहें कि पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है जिसको पूरे हमारे देश में अगर ये सफल होता है 2,585 करोड़ रुपए के लागत से 7,000 ऐसे साइट्स हैं जहां पर पहचान की गई है। इन स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनका क्या फायदा है, जिसमें कह रहे हैं कि बांध भी नहीं लगेगा और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी और एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो किस तरह से ये लाभान्वित करेगा।
पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखें तो कई जगह पे जो नदियों की रफ्तार होती है वो काफी अच्छी रफ्तार होती है, कई जगहों पर वो एक असर से जब वो नीचे गिर रही होती हैं, तो उस गति का कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अभी जिक्र किया कि 7,000 से भी ज्यादा की संभावनाएं हैं और अभी तक का दोहन जो है वो सिर्फ 1,196 का है। अगर मेगावाट की बात करें तो जो क्षमता अनुमानित है वो 21,000 है, जबकि सिर्फ 5,100, यानी कि 1/4 ही हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम उस गति का फायदा क्यों ना उठाएं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जब देश बढ़ रहा है तो ऐसे में आप वो बाधाएं कैसे दूर करें। अब यहाँ पर एक सामान्य सी बात कही गई जिसका आपने जिक्र किया कि आपको बांध नहीं बनाना है, तो बांध जहां कहीं भी बनता है वहां पर सबसे बड़ी शिकायत लोगों की यही रहती है और आलोचना की जाती है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है। तो आप कहें कि हम उस गति का फायदा उठाएंगे, यानी कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाएंगे, आपका एक जिसको कहा जाए कि एक मशीन है जो पानी की गति से बिजली बनाएगा और जो इलाके हैं उन इलाकों में बिजली मुहैया कराएगा। इसकी लागत भी जो है आपकी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि आपको बांध नहीं बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपके लिए कोई कच्चा माल नहीं है,
तो मूल्य भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, उसका मूल्य भी बहुत
बिल्कुल मूल्य कम होगा। और हाइड्रो पावर में एक बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपके पर्यावरण को जो है वो काफी फायदा पहुंचता है। और दूसरी बड़ी बात है कि जैसा मैंने कहा कि कच्चे माल के लिए आपको कोई लागत नहीं चुकानी होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर जी इस विस्तृत चर्चा के लिए।
धन्यवाद।
आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में